समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। परिक्रमा के आज के सफर में आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
Hello, Charu. Hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay. And with me today is my co-host, Charu Saxena. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 पाकिस्तानी विमान गिराए थे।
एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री सोर्स टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,51,000 करोड़ रुपीस इन लास्ट फिस्कल।
देशभर में रक्षाबंधन का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
इन यूएस थाउजेंड्स आस्क्ड टू इवैक्यूएट इन वेक ऑफ फास्ट मूविंग वाइल्ड फायर्स इन सदर्न कैलिफोर्निया।
रमेश बुधिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the Kakori train incident, World Sanskrit Day, and the International Day of the World's Indigenous Peoples. Well, to start off with the first topic of the day, that is the Kakori train incident. Well, 100 years ago on August 9th, 1925, a group of 10 young revolutionaries executed a daring plan that would echo through India's freedom struggle and beyond. The Kakori train incident, a meticulously planned heist of the British Railway Treasury, was more than a robbery. It was a bold statement against colonial oppression and a testament to the unbreakable bond of Hindu-Muslim unity.
9 अगस्त 1925 को 8 नवंबर डाउन ट्रेन शाहजहापुर से लखनऊ जा रही थी, जब ये काकोरी से गुजरी तो क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र लाहिड़ी ने आपातकालीन जंजीर खींचकर ट्रेन रोक दी और बाकी क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू कर लिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस ट्रेन को इसलिए लूटा क्योंकि उसमें धन के बैग थे, यानी कि पैसे बहुत थे उसमें, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा किया जाना था। उन्होंने केवल गार्ड के केबिन में मौजूद बैग लूटे जिनमें लगभग 8,000 रुपए थे और वो लखनऊ भाग गए।
Yes, and one lawyer, Ahmed Ali, who was a passenger, had got down to see his wife in the ladies' compartment and was killed by a bullet fired by Manmath Nath Gupta, and this made it a manslaughter case. Following the incident, the British administration started an intense manhunt and arrested several of the revolutionaries who were members of the incident. Their leader, Ram Prasad Bismil, was arrested at Shahjahanpur on 26 October 1925, and Ashfaqullah Khan was arrested on 7 December 1926 at Delhi.
Kakori Railgadi Kand ke mool mein Arya Samaj ke Kattar Anuyayi Ram Prasad Bismil aur ek Kattar Musalman Ashfaqullah Khan ke beech gehra bandhan tha. उनकी मित्रता और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई, जिसने फूट डालने के अंग्रेजों के प्रयासों को चुनौती दी। काकोरी कांड ने पूरे देश में एकता की लहर फैला दी। इसने दिखाया कि हिंदू और मुसलमान एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होकर काम कर सकते हैं और सीधे तौर पर अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। वास्तव में इस कांड ने क्रांति के युग की भावना का मार्ग भी प्रशस्त किया।
Yes, and Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to the revolutionaries of the Kakori incident. In a social media post, Mr. Modi said, "On this day, 100 years ago, the courage shown by patriotic Indians at Kakori highlighted the resentment among the people against colonial rule." He said they were angry at the manner in which people's money was being used to further colonial exploitation. The Prime Minister said their valour will always be remembered by the people of India. He said the government will keep working to fulfil their dreams for a strong and prosperous India. And Charu, in Uttar Pradesh, various events were organised on the anniversary of the Kakori train incident. CM Yogi Adityanath, in a social media post, said that this saga of bravery is an inspiration for the citizens of the country. The sacrifice, courage and patriotism of these heroes will always inspire our hearts to work with the spirit of nation first. And Prasar Bharati Chairman Navneet Sehgal inaugurated the exhibition of rare and historical newspapers under the title Dastavej at the Kokoro Art Gallery in Lucknow today. Keeping in mind the centenary year of the Kakori train action, rare pictures of four important martyrs, Ram Prasad Bismil, Rajendranath Lahiri, Roshan Singh and Ashfaqulla Khan, have also been displayed in the exhibition, and this exhibition will be open for visitors till the 12th of this month. And now moving on to a second topic in a Dateline section, that is the World Sanskrit Day. Today is also the World Sanskrit Day. It is celebrated every year on Shravan Purnima in the month of Shravan of the Hindu calendar to promote and spread awareness about this ancient Indian language. It is one of the oldest languages in the world and is also called the mother of many modern languages. Sanskrit language is known for its antiquity as well as its grammar. And Charu, Sanskrit helps to do research in different subjects, including Ayurveda, ancient philosophy, yoga and Vedas, for getting more and more knowledge for future progress. And rich literary and philosophical legacy, Sanskrit is the liturgical language of Hinduism, Buddhism and also Jainism.
बिल्कुल देखो संस्कृत को भारतीय संस्कृति की भाषा कहा जाता है एक प्राचीन भाषा से कहीं अधिक संस्कृत भारतीय दर्शन गणित साहित्य और धार्मिक परंपराओं की रीढ़ है और इसका संरचित एक तरीके से जो इसका संरचित व्याकरण है और विशाल शब्दावली भाषा विज्ञान में अधिक मानक स्थापित करती है विश्व संस्कृत दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये भाषा सदियों के ज्ञान को जोड़ती है वैदिक सभ्यताओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान तक और ये उत्सव साझी विरासत और स्वदेशी भाषाओं के वैश्विक सम्मान की निरंतर खोज की याद दिलाती है
Yes, absolutely. And in this modern world, several education institutions and centers have been promoting Sanskrit language and providing many courses for students like Sanskrit for yoga, Ayurveda and Buddhism. And according to UNESCO Intangible Cultural Heritage website, the Vedic language, which is derived from classical Sanskrit, comprises a vast corpus of Sanskrit poetry, philosophical dialogue, and ritual incantations developed and composed by Aryans about 3,500 years ago.
वैदिक विरासत में चार वेदों में संकलित अनेक ग्रंथ और व्याख्याएं समाहित हैं और जिन्हें आमतौर पर ज्ञान की पुस्तकें कहा जाता है हालांकि ये मौखिक रूप से प्रसारित हुई है ऋग्वेद पवित्र ऋचाओं का संकलन है सामवेद में ऋग्वेद और अन्य स्रोतों से ऋचाओं को संगीत में संयोजन है यजुर्वेद में पुरोहितों द्वारा प्रयुक्त प्रार्थनाओं और यज्ञों के सूत्र पर्याप्त मात्रा में है और अर्थवेद में मंत्र शामिल है वेद हिंदू धर्म के इतिहास और शून्य की अवधारणा जैसी कई कलात्मक वैज्ञानिक और दार्शनिक अवधारणाओं के प्रारंभिक विकास की भी जानकारी देते हैं
Yes, Charu, and Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings on World Sanskrit Day. In a social media post, Mr. Modi wrote, Sanskrit is a timeless source of knowledge and expression, and its impact can be found across sectors. He added that over the last decade, the government has undertaken many efforts to make Sanskrit popular, which includes setting up central Sanskrit universities, Sanskrit learning centers, providing grants to Sanskrit scholars, and the Gyan Bharata mission to digitize manuscripts. And the Prime Minister asserted that this has benefited countless students and researchers. And Mr. Modi said this day is an occasion to appreciate the effort of every person around the world who is learning and popularizing Sanskrit.
विश्व संस्कृत दिवस पर न केवल परंपरा का सम्मान करने का आह्वान किया जाता है बल्कि संस्कृत के अध्ययन अध्यापन और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का भी आह्वान किया जाता है जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक शैक्षिक पहल बढ़ रही है संस्कृत में रुचि पहले से कहीं अधिक हो गई है और वो उत्सव छात्रों भाषाविदों शिक्षकों और समुदायों को संस्कृत के शाश्वत सौंदर्य को दैनिक जीवन में ढालने और इसे आने वाली शताब्दियों तक एक जीवंत विकासशील भाषा के रूप में संरक्षित करने के लिए आमंत्रित करता है
Yes, and now we move on to a third topic in a Dateline section, that is the International Day of the World's Indigenous Peoples. And well, today is also the International Day of the World's Indigenous People, and it is observed to raise awareness and protect the rights of the world's indigenous population. And this observance also recognizes the achievements and contributions that indigenous people make to improve world issues such as environmental protection. And the day also provides an opportunity for indigenous people to share their perspectives and concerns on a global stage. and also Charu, the day aims to promote a better understanding of indigenous issues among governments, non-governmental organizations and the general public. And the observance of the day was first pronounced by the United Nations General Assembly in December 1994, marking the day of the first meeting of the UN Working Group on Indigenous Populations on the Promotion and Protection of Human Rights in 1982.
मूल निवासी दुनिया के सभी क्षेत्रों में रहते हैं और वैश्विक भूमि क्षेत्र के लगभग 22% हिस्से के मालिक हैं और उस पर कब्जा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं. मूल निवासी दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. वो दुनिया की अनुमानित 7,000 भाषाओं में से अधिकांश भाषा बोलते हैं और 5,000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. अभिषेक, देखो अपनी जो सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद दुनिया भर के मूल निवासी अलग अलग लोगों के रूप में अपने अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी समान समस्याओं को साझा करते हैं.
एब्सोल्युटली. एंड इंडिजिनस पीपल हैव रिच एंड एंशिएंट कल्चर्स एंड व्यू द सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम्स एज इंटरडिपेंडेंट एंड दे मेक वैल्युएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड्स हेरिटेज थैंक्स टू द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट. येट चारु, मेनी इंडिजिनस पीपल्स कंटिन्यू टू बी कन्फ्रंटेड विद मार्जिनलाइजेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड अदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इजंट इट?
राष्ट्रों का ये कर्तव्य है कि वे स्वदेशी लोगों को उनके सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करने में सहयोग दें, साथ ही विश्व के सांस्कृतिक और जैविक परिदृश्य की विविधता को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करें. देखिए, वर्षों से स्वदेशी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न विषयों का चयन किया गया है और इस वर्ष का विषय है स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना.
Yes, you talked about the theme and now let us discuss the theme in some detail. While the AI can support cultural revitalization, youth empowerment and even adaptation to climate change, it often reinforces bias, exclusion and misrepresentation towards indigenous peoples. And most AI systems are built without indigenous input, risking the misuse of the data, knowledge and identities. And besides, massive data centers can also impact indigenous lands, resources and ecosystems. And this is a new issue added to the barriers to accessing new technologies, especially in rural areas, excluding indigenous from full participation in AI-related processes. And to unlock AI's full potential, indigenous people must be respected as rights holders, co-creators and decision makers. Meaningful inclusion, data sovereignty and culturally grounded innovation are key to ensuring AI empowers the communities. Spread the word. Let's leave no one behind.
हाँ जी अभिषेक, देखिए अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. चलिए सबसे पहले मैं ही ले लेती हूँ. बिहार में पुलिस महकमे को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में लाया जा रहा है. आधुनिकीकरण के लिए और पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली को डिजिटल करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है.
बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट को और इसके कामकाज को अन्य सरकारी महकमों की तर्ज पर डिजिटल करने की तैयारी चल रही है. इससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर इन्हें समुचित तरीके से लागू करने के लिए पुलिस आईजी आधुनिकीकरण और वरिष्ठ अधिकारी पी कनन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी ने हाल ही में तेलंगाना और कर्नाटक का दौरा किया. अपर पुलिस महानिदेशक आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस की पूरी प्रणाली मोबाइल आधारित हो जाएगी. एडीजी श्री कुमार ने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों का पुलिस महकमा पूरी तरह डिजिटल तरीके से काम करता है. इनके कामकाज का अध्ययन बिहार के संदर्भ में किया गया है. इसका उपयोग बिहार में कैसे किया जाए इस पर काम चल रहा है. एडीजी ने कहा कि बिहार पुलिस रजिस्टर, मैनुअल, फाइलों का आदान प्रदान करने की तरीके समेत कई कार्य डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं. पुलिस के कामकाज को डिजिटल तरीके से निपटाने से दस्तावेज, सैंपल समेत अन्य सभी जरूरी चीजों का संरक्षण डिजिटल माध्यम से हो सकेगा. इनसे छेड़छाड़ करना भी संभव नहीं होगा. साथ ही यह अधिक प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम होगा. देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों को एकत्र करना बहुत जरूरी हो गया है. इसमें बदलाव को देखते हुए बिहार पुलिस भी अपने कामकाज के तरीके को बदल रही है. ऐसे में डिजिटाइजेशन पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है. उम्मीद है कि अत्याधुनिक पुलिसिंग से बिहार पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा. परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय.
देखिए, रक्षाबंधन के अलग अलग एक मान्यता है और एक कथा है। उसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था और उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, उसमें से लगातार खून बह रहा था। तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। तो एक तरीके से हर एक चीज की खासियत है।
Yes, absolutely. And the festival of Raksha Bandhan, celebrating the cherished bond between brothers and sisters, has been observed across the country today. And as Charu was mentioning that anecdote behind Raksha Bandhan, and in Punjab, women and girls are tying the rakhis to the brave soldiers of the Border Security Force at various places of Punjab border, including at the internationally famed Atari Wagha Joint Checkpost in Amritsar. We have more from a correspondent.
Women and girls are tying the sacred rakhis to the brave soldiers of the BSF at various places at Punjab border, including at the internationally famed Atari Wagha Joint Checkpost in Amritsar. Former Health Minister Punjab Professor Lakshmikanta Chawla, who is celebrating the festival with the troops at the border for the last over 50 years, today also reached there with others to tie the sacred rakhi with gratitude. These moments remind that Raksha Bandhan is not just about sibling bonds, but about honoring the protectors of
Yes, and now moving on to some news from the defense sector. Well, chapters on the lives and sacrifices of Field Marshal Sam Manekshaw, Brigadier Mohammed Usman, and Major Somnath Sharma have been added to the NCERT syllabus in this academic year in Class 8 Urdu, Class 7 Urdu, and Class 8 English, respectively. The newly introduced chapters aim to provide students with inspirational narratives of courage and duty. Field Marshal Sam Manekshaw, India's first officer to be conferred the rank of Field Marshal, is remembered for his exceptional leadership and strategic acumen. Brigadier Mohammed Usman and Major Somnath Sharma, both recipients of the Mahavir Chakra and Paramvir Chakra respectively, posthumous, laid down their lives in service of the nation and remain symbols of supreme sacrifice. And as part of efforts to establish National War Memorial as a prominent national landmark, Ministry of Defence has partnered with the Ministry of Education and the National Council of Educational Research and Training, NCERT, to integrate NWM and related references into the school curriculum. And through these studies and the inclusion in the curriculum, students will not only gain insights into India's military history, but also absorb important life lessons on resilience, empathy, emotional intelligence, and the importance of contributing to nation building.
देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,27,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% की मजबूत वृद्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का स्पष्ट संकेत है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और अन्य हितधारकों की भी सराहना की। सो अभिषेक, चलिए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो रमेश बुधियाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के ओपन पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। बुधियाल ने आज की पहली हीट में 14.84 के स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल में दबदबा बनाया और फिलीपींस के नील सांचेज पर बढ़त बनाई। पुरुष ओपन की अंतिम हीट में किशोर ने संयमित प्रदर्शन करते हुए 10.5 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। और अब वक्त है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
The 9th of August is the birth anniversary of freedom fighter Sayyed Ahmadullah Qadri, who was born in 1909 in Hyderabad. Hailing from the house of Shamsullah Qadri, who was a famous writer, Sayyed was introduced to the literary circles at quite an early age.
Sayyed Ahmadullah Qadri founded the famous newspaper Sultanate, Apart from that, he also wrote for two other newspapers called Paisa Akhbar and Tarikh Publications. In 1946, Qadri was the first journalist of Hyderabad state to write in favor of one nation theory in Urdu News Daily Sultanate. He decided to join politics and became a member of the Andhra Pradesh State Legislative Council and chairman of the Andhra Pradesh State Hajj Committee.
Holding numerous pivotal positions throughout his life, Qadri decided to enter into the field of education. Appointed as the president of Lutfuddola Oriental Research Institute, he made sure to contribute richly to the life of his students. Sayyid Ahmadullah Qadri was awarded the Padma Shri by the Government of India in 1966. The noble soul breathed his last on the 5th of October, 1985. We salute the great nationalist.
9th of August is the death anniversary of Trailokyanath Chakraborty. He was born in 1889 at Moymansingh in present-day Bangladesh. He joined the freedom struggle in 1906 as a boy of 7 years of age and became member of the Dhaka Anushilan Samiti. He was first arrested for his revolutionary activities in 1908, as a result of which he could not finish his education.
He was arrested again in Calcutta in 1914 due to his active participation in revolutionary activities and was sent to Andaman for the Borishal case. Trailokyanath came back to Kolkata on the expiry of his sentence. There, he took charge of the national school. He was arrested again in 1927 and was sent to a prison in Burma, where he remained for 1 year.
After being released from the jail, he joined the Hindustan Republican Army. He participated in the Lahore Congress session of 1929. He was in jail again for 8 years, from 1930 to 1938. After his release, he participated in the Quit India movement and was imprisoned in 1942. However, he was released from jail in 1946.
After the creation of East Pakistan, he remained active in politics there. In 1970, he came to Delhi due to health issues. The noble soul breathed his last in Delhi on the 9th of August, 1970. AIR News salutes the brave martyr.
We remember freedom fighter Kamla Prasad Vishwakarma. He was a resident of Azamgarh, Uttar Pradesh. He took part in the Quit India movement at an age of only 9 years. He received bullet wounds in the police firing, but later he was arrested and sentenced to 6 months of rigorous imprisonment. Kamla Prasad Vishwakarma died in detention on the 9th of August 1942 on account of severe torture by the jail authorities.
Yes, and we also remembering Jerome John Garcia, who passed on this day. In 1995, he was an American musician, who was a lead guitarist and a vocalist with the rock band Grateful Dead, which he co-founded and which came to prominence during the counterculture of the 1960s. And although he disavowed the role, Garcia was viewed by many as a leader of the band. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1994 as a member of the Grateful Dead. Let's listen into the band's hit 1987 song, Touch of Grey, and it's from the album In the Dark.
साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय का निधन आज ही के दिन 2002 को हुआ. उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया. इनके जन्म जो है वो 1 नवंबर 1924 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था और ये बचपन से ही अपनी अवस्था के बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक गंभीर हुआ करते थे. तो साहित्यकार थे, इनको पद्म भूषण मिला. वो जहां भी हैं ईश्वर उन पे कृपा करे. और आज जयंती है हिंदी के जाने माने गद्य लेखक शिव पूजन सहाय की. आर्य सहाय के निधन पर राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि सहाय की सोने की प्रतिमा लगाई जाए और उस पर हीरे मोती जड़े जाएं, तो भी साहित्य में उनके योगदान की भरपाई नहीं की जा सकती. सरकार ने सहाय जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया, डाक टिकट भी जारी किया. उनकी प्रमुख गद्य कृतियां हैं देहाती दुनिया, महिला महत्व, विभूति और मेरा जीवन. उनकी भाषा सहज थी. उन्होंने उर्दू के शब्दों को खूब इस्तेमाल किया और प्रचलित मुहावरों के जरिए जनरुचि के विषय पर बात की. उन्होंने कहीं कहीं गद्य में कविता जैसा असर लाने की कोशिश की. उन्होंने अनेक किताबों और पत्रिकाओं का संपादन भी किया. असहयोग आंदोलन के दौरान सहाय जी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पत्रकारिता करने लगे। उन्होंने प्रेमचंद की रंगभूमि अन्य कहानियों के संपादन में भी योगदान किया।
Yes, and Gregory Oliver Hines passed away this day in 2003. He was an American dancer, actor, choreographer, and a singer. He is one of the most celebrated tap dancers of all time. And as an actor, he is best known for Ulfin, The Cotton Club, White Nights, Running Scared, and The Gregory Hines Show, playing Ben on Will and Grace, and for voicing Big Bill on the Nick Jr. animated children's television program, Little Bill. Hines starred in more than 40 films and has also appeared on Broadway.
दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक नुक्कड़ में खोपड़ी का रोल निभाने वाले अभिनेता समीर खाकर का जन्म आज ही के दिन 1952 को हुआ। शराबी खोपड़ी के किरदार से उन्होंने देश भर के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। 90 के दशक में समीर फिल्मों में जाना पहचाना चेहरा था और पुष्पक, शहनशाह, रखवाला, दिलवाले, राजा बाबू जैसी फिल्मों में नजर आए। समीर ने करियर की शुरुआत नुक्कड़ से की और फिर उन्हें सर्कस में चिंतामणि का रोल मिला। श्रीमान श्रीमती में फिल्म निर्देशक टोटो और संजीवनी में भी गुड्डू माथुर के रोल में भी उन्होंने मतलब उन्हें बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने हंसी तो फंसी, जय हो, पटेल की पंजाबी शादी जैसी फिल्मों में काम किया।
जी महेश बाबू वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1975। इज एन इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हु वर्क्स इन तेलुगु सिनेमा। ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा एंड इज फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट सिंस 2012। He has appeared in over 25 films and is a recipient of several accolades, including 9 Nandi Awards, 5 Filmfare Awards South, 4 Seema Awards and 2 Gadar Telangana Film Awards.
आज हिंदी साहित्य के नामी ग्रामी लेखक मनोहर श्याम जोशी की जयंती है। वो प्रसिद्ध उपन्यासकार, पत्रकार, धारावाहिक लेखक, फिल्म पटकथा लेखक और संपादक थे। दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि लिखने के कारण वो भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने पटकथा लेखन नामक पुस्तक की रचना की। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के वो संपादक रहे। सड़क के मुहावरों पर उनकी पकड़ जानी जाती थी। वे कुमाऊं के थे, इसलिए कुमाऊनी पर अधिकार तो स्वाभाविक था और कसब पे उसका प्रचुर इस्तेमाल हुआ, लेकिन नेताजी कहिन की भाषा अवधि है। कुरुकुरु सुहा में बम्बैया हिंदी है, हमजाद में तो पूरी तरह उर्दू के लेखक मुहावरेदारी है। उनकी कहानी प्रभु तुम कैसे किस्सा गो में तो कन्नड़ के कई सारे शब्द हैं। वैसे इस कहानी पर भी वेश्याओं के जीवन पर उनके शोध का प्रभाव है। हालांकि ये कहानी हिंदी कहानी साहित्य और विश्व कथा साहित्य अल्बर्ट कामू, हेनरी मिलर, ओ हेनरी आदि के लेखन को कई प्रसंगों से समेटती है।
Yes, and Whitney Elizabeth Houston was born on this day in 1963. She was an American singer, actress, film producer, model, and philanthropist. Commonly referred to as the voice, she is one of the most awarded performers of all time. And let's listen in to one of her hit tracks.
निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टांक का जन्म आज ही के दिन 1936 को हुआ था। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें साजन बिना सुहागन, सौतन, सौतन की बेटी, सनम बेवफा जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। उन्होंने संजीव कुमार और महमूद जूनियर जैसे अभिनेताओं को ब्रेक दिया और अभिनेता हरिभाई जरीवाला को यानी कि संजीव कुमार का नाम दिया। निर्देशन के तौर पर उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म सौतन प्लैटिनम जुबली हिट हुई।
चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।
Yes, and John Dryden was born on this day in 1631. He was an English poet, literary critic, translator, and playwright who in 1668 was appointed England's first poet laureate. He is seen as dominating the literary life of Restoration England to such a point that the period came to be known in literary circles as the Age of Dryden. Romantic writer Sir Walter Scott called him Glorious John.
So, आज का परिक्रमा कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरे सहयोगी अभिषेक को। नमस्कार, नमस्कार।